यही रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। दो नए राजनीतिक दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग में हुए दर्ज। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी के पक्ष में नेकपा एमाले के 55 केंद्रीय सदस्यों और 30 सांसदों ने की शिनाख्त। आज देशभर में कोरोना के 2482 नए मामले आए सामने। 44 संक्रमितों की हुई मौत। 1781 मरीज हुए संक्रमण मुक्त। कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में 9 महीनों का अंतर रखने पर भी होगा प्रभावकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय का कथन। और तालिबान ने अमेरिकी डॉलर और अफगान कलाकृतियों को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को दर्ज किया है। आज हुई निर्वाचन आयोग की बैठक ने दल पंजीकरण करने का निर्णय किया। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ने दी। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ज हुई, जबकि महंत ठाकुर के नेतृत्व में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ज हुई है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी में संलग्न नेकपा एमाले की 55 केंद्रीय सदस्यों और 30 सांसदों ने निर्वाचन आयोग में उपस्थित होकर दल के पक्ष में शिनाख्त की थी। सरकार द्वारा जारी राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश के आधार पर आयोग ने एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय सदस्यों और सांसदों को जरूरी कागजात के साथ आज सुबह 11:30 से दोपहर 2 बजे तक में शिनाख्त के लिए बुलाया था। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाल ने भारत की नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के जरिए शिनाख्त की थी। ये बात नेता राजेन्द्र पांडे ने बताई। नेता पांडे के मुताबिक दल पंजीकृत होने के साथ ही विगत में समानांतर कमेटी के रूप में बनाई गई कमेटियों को सक्रिय कर वार्ड तह तक संरचना विस्तार करने और प्रदेशों व स्थानीय तहों के जनप्रतिनिधियों के इच्छित पार्टी में शामिल हो सकने की व्यवस्था है और इसके लिए काम किए जा रहे हैं। आज ही महंत ठाकुर के नेतृत्व में प्रस्तावित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्यों और सांसदों ने निर्वाचन आयोग में दल पंजीकरण की मान्यता प्राप्त करने के लिए शिनाख्त की थी। नेता शरद सिंह भंडारी से मिली जानकारी के मुताबिक 14 सांसदों और केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के 17 सदस्यों ने शिनाख्त की थी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने पार्टी से अलग होकर भिन्न दल पंजीकरण की प्रक्रिया में रहे नेता कार्यकर्ताओं से वापस पार्टी की मूलधार में लौटने का आग्रह किया है। नेकपा एमाले स्थायी कमेटी की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष ओली ने कहा कि पार्टी विभाजन के गलत रास्ता त्याग कर पार्टी में लौटने वालों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दल विभाजन की दूषित मंशा रखकर मौजूदा सरकार ने व्यक्ति विशेष के लिए अध्यादेश जारी किया है। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सरकार देश को अस्थिर और अलोकतांत्रिक रास्ते पर ले जाना चाहती है। इस बात का जिक्र करते हुए कि पार्टी द्वारा 14 सांसदों पर की गई कार्रवाई पर सूचना प्रकाशित नहीं की गई, अध्यक्ष ओली ने कहा कि ऐसा करके सभामुख ने संसदीय मर्यादा और निष्पक्ष भूमिका निभाने में अक्षमता दिखाई। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ने भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण के काम संबंधित निकायों को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई प्राधिकरण की निर्देशक समिति की 20वीं बैठक ने प्राधिकरण द्वारा अब तक किए गए कामों के लिए धन्यवाद देते हुए बाकी कामों को पूरा करने के लिए हस्तांतरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। बैठक ने प्राधिकरण से हुए कामों में से आपदा से संबंधित कामों का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण से समन्वय, अनुगमन और व्यवस्थापन किए जाने का निर्णय किया। इसी तरह शहरी विकास मंत्रालय निजी आवास पुनर्निर्माण से संबंधित और स्वास्थ्य संस्थाओं व सरकारी भवन निर्माण के कामों का व्यवस्थापन करेगा। वहीं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय विद्यालय के पुनर्निर्माण से संबंधित और विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के कामों का व्यवस्थापन करेगा। बैठक में प्रधानमंत्री देववा, गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़, अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले की ओर से राम बहादुर थापा लगायत उपस्थित थे। बता दें कि कानून के मुताबिक प्राधिकरण का निर्धारित कार्यकाल आगामी पूस 10 गति को समाप्त हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के बीच 9 महीनों का अंतर होने पर भी प्रभावकारी होगा, ये बात स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने बताई। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ कृष्ण प्रसाद पौडे ने कहा कि वैक्सीन का दूसरा डोज लेने में देर होने पर भी वो अच्छी तरह काम करता है, ये बात विभिन्न अध्ययनों से पता चली है। साथ ही उन्होंने ये बात भी दोहराई कि आश्विन महीने तक देश के एक तिहाई नागरिकों को और चैत महीने तक वैक्सीन लेने योग्य सभी नागरिकों को वैक्सीन मुहैया कराने का सरकार का लक्ष्य है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर व्यावसायिक विश्राम।
हेलो,
के गर्दैछौ?
हाम्रो बिहेको सपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मीसँग।
ए हो र, अनि मेरो लागि के किन्दैछौ?
बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले। मलाई त कस्तो लाज लाग्छ, भरे राति बोलौँ न ल।
अहिले फ्री वाइफाई छ क्या अफिसमा, बुझ न भरे कसरी गर्नु।
मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो। एनटीसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजे देखि बिहान 6 बजे सम्म।
अब रात तपाईको
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आज देशभर में कोरोना के 2482 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 44 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 1781 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 38,287 है। इनमें से 610 मरीजों का इलाज आईसीयू में और 161 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य सेवा विभाग वैक्सीन भंडारण क्षमता को बढ़ाने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। विभाग की आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा के मुताबिक मोडर्ना और फाइजर वैक्सीन के लिए अधिक कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होने के कारण भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। नेपाल और थाईलैंड के बीच कोविड 19 के विरुद्ध सहकार्य करने की सहमति हुई है। नेपाल और थाईलैंड संयुक्त आयोग की वर्चुअल माध्यम से हुई 5वीं बैठक में ऐसी सहमति हुई। महामारी के कारण दो देशों की जनता को झेलनी पड़ रही समस्याओं का समाधान करने की सहमति दोनों देशों के बीच हुई है, ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार प्राविधिक सहयोग, व्यापार और निवेश, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और जनता जनता के बीच संबंध के विषय में भी बैठक में विचार विमर्श हुआ। बैठक में नेपाल की ओर से परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल और थाईलैंड की ओर से परराष्ट्र मंत्रालय के स्थायी सचिव थानी थोंगपाक्ती शरीक हुए थे। जिला प्रशासन कार्यालय चितवन ने लॉकडाउन के स्वरूप में कुछ हद तक ढील देते हुए निषेधाज्ञा की अवधि को भाद्र 20 गति तक के लिए बढ़ा दिया है। आज प्रमुख जिलाधिकारी प्रेमलाल लामिछाने ने आदेश जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि चितवन समेत 3 जिलों के विकास के लिए वृहत्तर योजना लाने की जरूरत है। भरतपुर मेट्रो प्लाजा बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि चितवन से नवलपुर के दाउन्ने और मकवानपुर के हिटौड़ा को जोड़कर एक विकास प्राधिकरण की अवधारणा अंतर्गत काम करने की आवश्यकता है। जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की रक्षा करना ही पार्टी का मुख्य दायित्व है। आज विराटनगर में आयोजित पार्टी प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संघीयता और प्राप्त परिवर्तन को उलटाने का खेल रचा जा रहा है, ऐसे समय में सभी दलों को सचेत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का पहला उद्देश्य प्राप्त अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही संविधान का संशोधन, नागरिकता और पहचान के आधार पर प्रदेश की पुनर्संरचना के विषय को आगे बढ़ाना है। अफगानिस्तान से नेपालियों का उद्धार कर स्वदेश वापस लाने की प्रक्रिया जारी है, ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के मुताबिक कल तक 770 नेपाली नागरिकों का उद्धार कर काठमांडू लाया जा चुका है, जबकि कौंसुलर सेवा विभाग के वेब पोर्टल में सूचीकृत 42 नेपाली नागरिकों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी है। सिंधुपाल्चोक से काठमांडू आने के दौरान एक यात्रीवाहक बस की हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 24 लोग घायल हो गए, ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुपाल्चोक ने दी। बता दें कि यह हादसा सुनकोशी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 में हुआ। हादसे में घायल हुए 15 लोगों का धुलीखेल अस्पताल और 9 लोगों का सदाबहार अस्पताल खाड़ी चौर में इलाज चल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान ने अमेरिकी डॉलर और अफगान कलाकृतियों को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी है। अफगान इस्लामिक प्रेस से बात करते हुए तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि इनके साथ पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर ऐसा कोई भी सामान मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। तालिबान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब विदेशों से वित्तीय मदद के दरवाजे उसके लिए एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के पास लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस राशि का अधिकतर हिस्सा अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान को इस संपत्ति में से कुछ भी नहीं लौटाएगा। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी अफगानिस्तान को सहायता और कर्ज देना निलंबित कर दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। दो नए राजनीतिक दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग में हुए दर्ज। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी के पक्ष में नेकपा एमाले के 55 केंद्रीय सदस्यों और 30 सांसदों ने की शिनाख्त। आज देशभर में कोरोना के 2482 नए मामले आए सामने। 44 संक्रमितों की हुई मौत। 1781 मरीज हुए संक्रमण मुक्त। कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में 9 महीनों का अंतर रखने पर भी होगा प्रभावकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय का कथन। और तालिबान ने अमेरिकी डॉलर और अफगान कलाकृतियों को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने पर लगाई रोक। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।